बहुत सी संख्या में यजीदी परिवार जो इराक और सीरिया में चल रहे संघर्ष से भागे हैं, वो अब ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए हैं। जब स्वयं घोषित इस्लामिक स्टेट ने उत्तरी इराक के शहर सिंजार को 2014 में घेर लिया, तब यजीदी लोग वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए और उसी क्षेत्र में आगे या दूसरे किसी देश में शरण मांगने पर मजबूर हो गए। लेकिन आखिर ये यजीदी लोग कौन हैं और ये इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता में क्यों हैं? इसी पर कुछ जानकारी। मोसुल के युद्ध में इस्लामिक स्टेट फोर्सेस सीरिया के साथ लगी इराकी सीमा की तरफ आगे बढ़ गईं और डर है कि कई हजार यजीदी अभी भी उनके कब्जे में हो सकते हैं। माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट ने कम से कम 3,500 औरतों को यौन गुलाम बनाया हुआ था। उनके साथ पुरुष और बच्चे भी गुलाम बने। यजीदी लोग पारंपरिक रूप से उत्तरी इराक के सिंजर डिस्ट्रिक्ट के हैं। पूरे इराक के 6,00,000 यजीदी में 4,00,000 सिंजर के ही हैं। हुलाफ उस्मोकी अमेरिका में यजीदी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। वो बताते हैं कि मारकाट और भेदभाव की वजह से यजीदी लोग दूर दूर तक जा पहुंचे हैं।
And in Georgia, about 20,000 people, and Armenia, 35,000 people. And in Syria, it's very hard to tell because of the Syrian civil war that's going on right now. So it's less than 10,000 in entire Syria.
श्री स्मोकी का कहना है कि यजीदी लोग स्वयं को इस धरती के प्रथम लोग मानते हैं और वो अपने धर्म को, जो उनके क्षेत्र से निकला, उसे सबसे पुराना धर्म मानते हैं। यजीदी लोग इस्लाम, ईसाई, जोरास्ट्रियन के मिश्रित पथ पर चलते हैं और साथ ही उनकी अपनी विशिष्ट पहचान भी है। यजीदी मानते हैं कि ईश्वर ने 7 फरिश्तों को बनाया उसके काम में सहायता करने के लिए, और इनमें से एक ने आदम के सामने झुकने से इनकार किया। श्री स्मोकी बताते हैं,
अकॉर्डिंग टू द यजीदी मिथोलॉजी, 6 ऑफ दोस एंजल्स बाउ टू आदम, सबमिटेड टू आदम एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ देम। सो यजीदीज बिलीव दैट दैट वाज ताउस मलक, ही वाज God assigned him to be in charge of the other angels as well as the humans on earth. So this is where the Yazidis came in clash to with Muslim beliefs.
Yazidi मानते हैं कि तब ताउस मेलेक धरती पर गिरा और वो मोर बन गया। यही यजीदिज्म का केंद्र चिन्ह है। श्री स्मोकी कहते हैं कि ईसाई और मुसलमान इस गिरे हुए फरिश्ते को अपनी पूजा प्रार्थना में गलत तरीके से सोचते हैं। वो डेविल वर्शिप में लेते हैं क्योंकि इसकी दानव लूसीफर की उत्पत्ति के साथ समानता है। और स्मोकी कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट द्वारा यजीदी पर हमले का यही कारण है और साथ ही 2007 में अलकायदा के हमले का भी यही कारण था जिसमें 600 लोग मारे गए।
According to their books in the Quran, they must be destroyed, they must be wiped out. Otherwise, God would judge Muslims if they did not kill the Yazidis. So they consider Yazidis infidels, and whenever they see the chance, they attack the Yazidis.
ह्यूमन राइट्स वॉच के एक वरिष्ठ इराकी खोजकर्ता हैं बिल्किस विली। वो बताती हैं कि इराक में जहां यजीदी रहते हैं उस जगह पर कोई सरकारी सहायता या निवेश आदि नहीं है। वो कहती हैं कि 3 अगस्त 2014 के दिन सिंजर पर इस्लामिक स्टेट द्वारा हमले से यजीदी बेघर हो गए और जान बचाने के लिए वहां से भागे।
Now they're living in camps for internally displaced people. This means that none of them are able to have a livelihood anymore because they need their land in order to have that livelihood.
वो बताती हैं कि ये लोग वापस अपने घर जा ही नहीं सकते, वो बहुत ही डरे हुए हैं.
There's just this level of uncertainty about what their future is because of the fact that they're probably too scared to go back to their homeland. A huge amount of Yazidis have traveled to Germany, and every Yazidi family I speak to says at this point there's no future for them within their own country, and instead they want to go to Germany because there at least there's a community where they would feel safe and there's sort of protection and law and order that would protect the community.
Deakin University mein politics aur policy associate professor Benjamin Issa Khan kehte hain ki Islamic State hamle aur Yazidi logon ke prati vyavhar jati sanghar yani genocide hai.
It was a very deliberate and very specific campaign where they actively persecuted a specific group of people with the direct intent of removing as many of them as possible in terms of physically executing people, taking as many others as possible into enslavement.
वो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट ने यजीदी लोगों के धार्मिक स्थल गांवों को एक संगठित तरीके से खत्म करने का प्रयत्न किया.
Not just to kind of send a message that they didn't agree with their religious doctrine, but really more broadly to kind of wipe their historical memory off the face of the earth. And that really constitutes genocide when you undertake a multi-pronged attack against a specifically identified group in order to erase their very existence.
वो बताते हैं कि ये समुदाय पहले भी सादाम हुसैन की बाथिस्ट सरकार के अरबी सेशन प्रोग्राम के तहत निशाने पर थे, जब बहुत से यजीदी वहां से जबरदस्ती निकाले गए, दर बदर किए गए. और हुलफ स्मोकी कहते हैं कि 2014 में इस्लामिक स्टेट के हमले से भी यजीदी और कुर्द के बीच में तनाव बढ़ा.
When the Islamic State came to Sinjar, when they first attacked the Yazidis on eve of August 3rd, 2014, Kurdish Peshmerga didn't fight the Islamic State and they couldn't run. They didn't fire one bullet. So the Yazidis felt betrayed by Kurds.
बिल्किस बिली कहती हैं कि हालांकि यजीदी नैतिक रूप से कर्डिश हैं और कर्डिश भाषा का ही एक रूप बोलते हैं, लेकिन वो अपने आप को कर्डिश नहीं मानते.
If you ask Yazidis whether they are Kurdish, they very vehemently disagree with that. They do not want to be identified as Kurdish. They think of themselves as an entirely separate group, and though they speak Kurdish, as I said, their Kurdish is a bit distinct. And of course, religiously, Kurds are Muslim. They're either Sunni or Shia, whereas the Yazidis do have their own religion.
और हलफ स्मोकी कहते हैं कि जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा, यजीदी लोग अपने क्षेत्र में वापस जाने से डरते ही रहेंगे.
No one, I believe, no one wants to leave their own homeland, but they are struggling to survive.